वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम तो मैं सभी उन भक्तों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे 3 दिवसीय हरे कृष्ण उत्सव में जिन्होंने अपना योगदान दिया। 3 दिन तक लगातार जो हर रोज आकर सेवा किए और 3 दिन से पहले पूरा महीना भर जो लगे हुए थे इस हरे कृष्णा उत्सव के प्रचार प्रसार में, विशेष रूप से सभी गृहस्थ भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, माताओं को प्रभु जी और विशेष रूप से हमारे ब्रह्मचारी जिन्होंने रात दिन एक कर हरे कृष्णा उत्सव को सफल बनाया। आप लोगों को हरे कृष्णा उत्सव अच्छा लगा? हालांकि आज का दिन तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कार्तिक का अंतिम दिवस। कार्तिक के अंतिम दिवस हम कुछ एक भास कर सकते हैं या भान कर सकते हैं कि गोपियों का वियोग क्या रहा होगा जब कृष्ण छोड़कर गए। तो जैसे कार्तिक के इस पूरे महीने में हमने कितने अलग अलग प्रकार से उत्सव किए अलग अलग जगहों पर, और कार्तिक का महीना ऐसा लगता है कि ये कार्तिक का महीना नहीं कार्तिक का साल होना चाहिए। और विशेष रूप से मेरे ख्याल से पहली दफा हम इतने बड़े पैमाने पर मंदिर में गोवर्धन पूजा मना रहे हैं, वो भी कार्तिक के अंतिम दिवस। और उन सब भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज दिन भर श्री गोवर्धन जी की प्रसन्नता के लिए इतने सारे भोग बनाए और इतने सुंदर तरीके से गोवर्धन जी को यहाँ पर सजाया है भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए। आप लोगों को आज के हमारे गोवर्धन कैसे लग रहे हैं? हम जानते हैं कि अभी तक फीस्ट मिला नहीं इसलिए हरिबोल का वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हम सभी जितनी शक्ति हमारे अंदर है हम सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहेंगे सभी ओर से सभी तरीके से 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गोवर्धन की पूजा भगवान ने बहुत से कारणों के वजह से की, परंतु एक प्रमुख विशेष कारण, क्योंकि भगवान के विभिन्न भक्तों में सर्वोपरि हैं गोपियां, ब्रज गोपियां। आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेन या कल्पितो। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर श्लोक में पूरे वृंदावन का विवरण दिया है। आराध्य भगवान व्रजेश तनय। आराधना उनकी होनी चाहिए जो नंद और यशोदा के तनुज हैं, और आराधना उनकी होनी चाहिए जिनकी आराधना व्रजवधु गोपियों ने की, रम्या काचिद उपासना जिन्होंने उनकी उपासना की गोपियों ने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके आने का जो निष्कर्ष हमें बताए, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास, न तो हम ब्रह्मचारी हैं, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी, न कोई ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, ये सारी उपाधियों को हमें दूर फेंक देना है। एकमेव उपाधि हमारी गोपियों के पदचिन्हों पर चलते हुए गोपीनाथ को प्रसन्न करते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण और राधा रानी के रूप में आए, अर्थात राधा रानी के भाव में आए, तो राधा रानी का भाव ये है कि गोपियों की भक्ति सर्वोपरि है। हालांकि सभी गोपियों में सबसे प्रमुख गोपी हैं श्रीमती राधा रानी, परंतु राधा रानी का यह भाव है। और यदि गोपियों का भाव पूछा जाए तो गोपियां वो श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आपके बहुत से दास हैं और बहुत सी दासियां हैं, उन सब में सर्वोपरि हैं श्री गोवर्धन। ये गोपियां बोलती हैं, श्री हरिदास वर्य, हरिदासों में वर्य, जो सबसे ऊंचे वो हैं श्री गोवर्धन। और भगवान श्री कृष्ण ने भी इसकी सराहना की, क्यों? क्यों श्री गोवर्धन वो सर्वोपरि हैं? क्योंकि गोवर्धन भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, इसलिए जितने भी भगवान के पार्षद भौम वृंदावन में भगवान के साथ अवतरित होते हैं, श्री गोवर्धन वो श्री ब्रजमंडल में भगवान के हरेक पार्षद को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। यहां तक कि पशु पक्षी, वृंदावन के जितने सारे पशु हैं, प्राणी हैं, उन सब को, और इसलिए इनका नाम क्या है, गोवर्धन, कि जो गौओं को प्रसन्नता दे, वर्धन करे उनकी प्रसन्नता। गो का अर्थ गौएं हैं, गो का अर्थ पृथ्वी है, और गो का अर्थ हमारी इंद्रियां, अर्थात भगवान के जितने सारे पार्षद हैं, गोप सखागण, गोपियां, नंद यशोदा, सारे ब्रजवासी गण, उनकी इंद्रियों को संतुष्टि देने के लिए श्री गोवर्धन। इसलिए इनके विषय में बताया गया है कि गोवर्धन के ऊपर हरेक वस्तु, वस्तु नहीं व्यक्ति, क्योंकि ये स्वयं व्यक्ति हैं, तो वहां के झरने, गोवर्धन के ऊपर के झरने, गोवर्धन के ऊपर की घास, गोवर्धन के ऊपर के कल्पवृक्ष, हरेक वो सभी की आत्मसंतुष्टि के लिए लगे रहते हैं। इसलिए जब नंद महाराज ने देवराज इंद्र का यज्ञ प्रारंभ किया उस वर्ष, और भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को रोककर कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासी गण को भी ये सिखा रहे थे कि जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो देवराज इंद्र से भी ऊंचा है, इसलिए हरिदास वर्य हैं। देवराज इंद्र भी हरिदास हैं, ब्रह्मा जी भी हरिदास हैं, जितने सारे 33 करोड़ देवता हैं वो सब है कौन? हरिदास। परंतु हरिदास वर्य हरिदासों में सर्वोपरि गोवर्धन, इसलिए क्योंकि भगवान सबको ये सिखाना चाहते थे कि वो जो बिना कुछ मांगे मेरे भक्तों की सेवा करता रहे अहैतु की अप्रतिहता तरीके से, वो मेरे हरिदासों में सर्वोपरि है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम साधकों को समझना और गोवर्धन की कृपा आज के दिन प्राप्त करना, कि यदि हमें भगवान के भक्तों में बहुत बड़ा नहीं बनना है, ये नहीं कि हमें भी हरिदास वर्य का वर्य बनना है, ये नहीं इसका आशय। आशय ये है कि हम इनके पद चिन्हों पर चलते हुए इनको संतुष्टि दें। तो ये जो भगवान के नित्य पार्षदों को संतुष्टि देते हैं, उनको कोई यदि संतुष्ट करे तो भगवान कितने संतुष्ट होंगे। इसलिए गोवर्धन पूजा का ये जो बहुत आंतरिक रहस्यमय कारण, वो हम साधकों को समझना बहुत आवश्यक है। हालांकि हमारे आचार्यों ने तो ऐसी ऐसी टीकाएं दी हैं भगवान की इस मधुर सुंदर लीला के पीछे, कि यदि हम चर्चा करने जाएं तो ये पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, और पूरा जीवन का अर्थ केवल ये शारीरिक हमारा जीवन नहीं, आत्मीय नित्य जीवन जो आत्मा का, वो भी कम पड़ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के 8 कारण, हालांकि अनगिनत कारण, परंतु यहां पर हम केवल आज 8 कारण ले रहे हैं, क्योंकि कलयुग में 7-8 के बाद गाड़ी उतर जाती है पटरी की, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी केवल, देखिए ये सब आचार्य केवल अष्टकम लेके आए, दामोदर अष्टकम, शिक्षा अष्टकम, गुरु अष्टकम, वो जानते हैं कि बस 7-8 की गिनती तक ठीक है कलयुग के लोग गिन सकते हैं, उसके बाद में फिर कैलकुलेटर लेना पड़ता है उनको। तो इसलिए हमने भी 8 कारण लिए हैं। सर्वप्रथम हम लोग आज नासिक में गोवर्धन पूजा मना सकें, इसलिए भगवान ने गोवर्धन लीला की। तो सोचिए 5000 वर्ष पूर्व भगवान हम सब नासिक के भक्तों के विषय में सोच रहे थे कि 2 नवंबर 2009 नासिक के भक्त क्या करेंगे शाम के दिन, यहां वहां घूमने के बजाय यदि मैं उनको एक इतना सुंदर उत्सव लाकर प्रस्तुत करूं तो सभी यहां वहां भटकने के बजाय भगवान श्री गोवर्धन के निकट, देखिए इतना निकट वहां पर भी कोई नहीं बैठ पाता, जो हम सब लोगों को सौभाग्य मिला है। एक रघुनाथ दास गोस्वामी का सुंदर पद है जिसमें वो केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं, निज निकट निवास देही मम गोवर्धन, कि हे गोवर्धन, एक ही प्रार्थना उनकी, कि मुझे आपके निकट निवास मिले। जैसे आजकल लोग देखिए कोई समुद्र के निकट निवास चाहता है, कोई बड़े जो ऐश्वर्यशाली लोग हैं उनके निकट कोई निवास चाहता है। लोग बोलते हैं मेरा बंगला है ना वहां खार बांड्रा में, उसके बगल में उस अभिनेत्री के बगल में, तो उनकी प्रार्थना क्या है, निज निकट निवास देही इनके, ये जो लोग। परंतु एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना क्या है? निज निकट निवास देही मम गोवर्धन, गोवर्धन के निकट। इसलिए आप गोवर्धन की परिक्रमा करते समय, कितनों ने गोवर्धन की परिक्रमा नहीं की है? आज हम आप सबको अवसर दे रहे हैं यहां लोकली गोवर्धन की परिक्रमा करने का, परंतु केवल इसी से आप संतुष्ट मत हो जाइए कि हां हो गया। आप लोग सबको आज श्री गोवर्धन के सामने आज ये प्रण लेना चाहिए कि मरने से पहले मैं एक बार गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा या करूंगी। तैयार हैं आप लोग? इनके सामने बोल दिया आपने हरि बोल, और वहां जाके मरने से पहले एक बार गोवर्धन जी की परिक्रमा अवश्य। तो वहां पर और कितनों ने की है? तो ऐसा नहीं कि आप नहीं करें। अब तो आपने देखा होगा वहां लोग गोवर्धन शिला लेकर एक के ऊपर एक वो ऐसे अपना घर जैसा वहां पर बनाते हैं। बहुत ही सुंदर भावना है वो कि गोवर्धन से ही गोवर्धन की शिला लेकर एक के ऊपर एक, जैसे कि हमारे प्राण गौरांग प्रभु बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे वो वहां पर अपना बंगला बना रहे हैं। देखिए भावना ये है कि मुझे श्री गोवर्धन आपके निकट ही रहना है, और वहां पर कोई कागजात की जरूरत नहीं कि ये किसके नाम पे होगा, ये बंगला कितना स्क्वायर फीट का, कितना एकड़ का, 7-12 हुआ कि नहीं, ये सब कुछ नहीं। वहां पर बस वो लिए शिला और बना दिए, उनका घर वहां पर भवन हो गया, और गोवर्धन स्वीकार करते हैं कि मेरे बगल में ये रह रहे हैं। हालांकि उनकी चेतना उनकी भावना से भी वो रह रहे हैं। तो आज हमको सबको सौभाग्य है कि हमारे मध्य में इतने सुंदर गोवर्धन जी, इनके सानिध्य में हम सब आज कार्तिक के महीने में, कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम दिवस गोवर्धन पूजा के विषय में और उनका श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो ये सब कुछ सौभाग्य हमें दिलाने के लिए भगवान ने उद्घाटन किया गोवर्धन पूजा का, कि हम सबको ये सुकृति मिलती रहे। ये सबसे पहला कारण भगवान गोवर्धन पूजा करने का, और गोवर्धन का यश वर्धन करने हेतु भगवान ने देखा कि श्री गोवर्धन चुपचाप सेवा किए जा रहे हैं, और सर्टिफिकेट मिल रहा है देवराज इंद्र को, सेवा कर रहे हैं गोवर्धन, और सब श्रेय मिल रहा है और किसी को। तो इसलिए भगवान ने ये नाइंसाफी स्वीकार नहीं की, इसलिए गोवर्धन जी का यश का वर्धन करने हेतु भगवान ने गोवर्धन पूजा। इसलिए भगवान ने अपना ऐसा संग गोवर्धन जी को दिया, 7 दिन 7 रात भगवान अपनी उंगली को स्पर्श किए। बहुत से ब्रजवासीगण भगवान का शारीरिक सानिध्य कुछ समय के लिए प्राप्त करते थे, जैसे गोप सखागण जब भगवान उनके साथ वन में विचरण करते तब उनको भगवान का सानिध्य मिलता, नंद यशोदा जब भगवान नंद भवन में रहते तब उनको सानिध्य मिलता, गोपियां जब भगवान निकुंज में गोपियों के साथ रहते तो उनको सानिध्य मिलता। तो अलग अलग प्रहर में, जो अष्ट प्रहर लीला भगवान की, अलग अलग प्रहरों में अलग अलग भक्त भगवान का सानिध्य प्राप्त करते, परंतु गोवर्धन इन्होंने 7 दिन 7 रात लगातार भगवान के संपर्क में, इस उंगली के संपर्क में बने रहे, और इसलिए उनकी वृद्धि हो रही थी। वो भगवान के संपर्क में आकर ऐसी उनकी सेवा बढ़ गई, उसमें ऐसी वृद्धि समृद्धि आ गई कि गोवर्धन फूले नहीं समा रहे थे। तो ये दूसरा कारण, बहुत एक महत्वपूर्ण कारण, इंद्र को सबक सिखाने हेतु। अब देवराज इंद्र, अब देखिए भगवान की कृपा यहां पर दिखती है कि भगवान अवतरित हुए हैं वृंदावन में, गोकुल महावन में, अपनी मधुर लीलाएं करने, और ब्रजवासियों के साथ भगवान लगे हुए हैं अपनी मधुर लीलाओं में, परंतु सोच रहे हैं इंद्र, सोच रहे हैं कि देवराज इंद्र को एक बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी? अहंकार, मद, ये बीमारी हो गई है। तो अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी में रहता है, आनंद में रहता है, तो वो किसी बाहरी दिन दुखियारे के विषय में इतना सोचता नहीं, परंतु भगवान देवराज इंद्र के विषय में सोच रहे थे कि भगवान ने पूरा गोवर्धन उठाया, ब्रजवासियों को बोला कि उनकी पूजा रोको, गोवर्धन की पूजा करो, केवल देवराज इंद्र का मान कम करने के लिए। एक दिन मन इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो, नाम पढ़ियो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम, नाम पढ़ियो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, ए नाम पढ़ियो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। एक दिन मान इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो, नाम पढ़ियो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। और ये बहुत आवश्यक था क्योंकि सभी देवताओं के राजा इंद्र, और भगवान ये भी सिखाना चाहते थे कि ये सारे जो ब्रजवासी हैं, जो कि साधारण गोपियां, ब्रज के ग्वाल, ब्रज की ग्वालन, ये सब हालांकि बाहरी रूप से कोई बहुत बड़े पद पर नहीं होंगे, इनको कोई ऐसी पदवी नहीं मिली हुई, और देवराज इंद्र को क्या पद मिला हुआ है, देवराज का पद। इनके सामने ब्रजवासी गण जो भगवान को पूर्ण शरणागत है, उनके साथ भगवान निरंतर लीला करना चाहते थे, 7 दिन 7 रात, क्योंकि भगवान ने देखा, जैसे हमने इसकी चर्चा की, कि अलग अलग ब्रजवासी भगवान के साथ अलग अलग प्रहर में लीला करते, कुछ समय केवल गोप भगवान के साथ रहते, कुछ समय केवल गोपियां, कुछ समय केवल नंद यशोदा। तो भगवान चाहते थे कि कोई ऐसा हरे कृष्ण उत्सव हो जहां पर सारे मेरे हरे कृष्ण भक्त आए, जैसे हमारे होता ना, एक है प्रेरणा केवल अनमैरिड बॉयज, एक है चेतना केवल अनमैरिड गर्ल्स, एक है संडे फीस्ट, उसमें हम इतने ज्यादा जो नवयुवक हैं, जो नवयुवतियां हैं, उनको इतना प्रचार नहीं करते। तो गृहस्थ फिर हमने परिवर्तन चालू किया, फिर हमारा बुधवार का कार्यक्रम। तो मानो गोवर्धन पूजा ये है कि प्रेरणा, चेतना, परिवर्तन, बुधवार, रविवार सब एक साथ गोवर्धन के नीचे। बोलो गिरिराज महाराज की। इसलिए भगवान निरंतर, कोई भी अंतर न आए, ऐसी लीला भगवान करना चाहते थे। इसलिए भागवत में तो केवल भगवान का इतना ही वर्णन दिया गया है कि भगवान ने गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर उठाया, परंतु कवि कर्णपुर अपने आनंद वृंदावन चंपू में व्याख्या करते हैं कि कैसे भगवान ने 7 दिन और 7 रात गोवर्धन के नीचे क्या क्या हुआ। वो 7 दिन और 7 रात क्या क्या हुआ, भगवान ने गोप सखागण के साथ कैसे लीलाएं की, और वहां पर नंद यशोदा भी हैं उनके साथ, एक साथ फिर गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, और भगवान ये देखना चाहते थे कि मेरे सारे जो भक्त हैं वृंदावन के, वो सारे भक्त एक साथ आते हैं तो वो फैमिली फोटो कैसा रहेगा। सारे भक्त एक साथ आते हैं, इसलिए भगवान छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को उठाए हुए मधुमंगल के साथ वार्ता कर रहे हैं, साथ साथ यशोदामय उनके साथ, और अपने आंखों के कोने से श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। तो दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, शांत रस, माधुर्य रस, ये जैसे कई बार होता ना, अलग अलग रसों का एक मिश्रण, मिक्स्ड फ्रूट जूस। मिक्स्ड फ्रूट जूस को क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कलयुग की भाषा में, कॉकटेल मत बोलना। तो भगवान इन सब, ये सभी रसों का मिश्रण कर इसका आस्वादन करना चाहते थे। तो इसलिए ये एक कारण, ब्रजवासियों की दृढ़ श्रद्धा का एक नमूना प्रस्तुत करने हेतु। इस पूरी लीला में देखिए, जब भगवान ने नंद महाराज से कहा कि इंद्र पूजा के बदले गोवर्धन की पूजा, जो आज तक कभी नहीं उन्होंने की, उनके लिए तो पर्वत, ये तो गोवर्धन लीला के बाद फिर गोवर्धन जी का क्या, उनके क्या गुण हैं ये समझ में आए। तो नंद महाराज, देखिए वो जो कि ब्रजराज, उनको ब्रजराज भी कहा जाता है, वृंदावन के जो राजा प्रमुख गोपगण, उनको ये 7 वर्षीय बालक बोलते हैं, ये सब छोड़ो इंद्र पूजा और गोवर्धन की पूजा कीजिए। तो नंद महाराज का विश्वास देखिए, दृढ़ श्रद्धा भगवान के ऊपर, कि नंद महाराज ने 7 वर्षीय अपने बालक के कहने पर इंद्र की पूजा रोक दी और गोवर्धन की पूजा की। इसे कहते हैं दृढ़ विश्वास। तो इसके द्वारा भगवान क्या सिखा रहे हैं, कई बार हम भी अपनी पूजाओं को पकड़ कर रखते हैं, कई बार लोग ऑल्टर में कोने में रखूं क्या उनको, जो इतने सदियों से हम उनको पूजते आए हैं। तो हाँ, राधा कृष्ण को रखेंगे, परंतु थोड़ा यहां साइड में, थोड़ा इधर उधर पीछे कहीं पे ऊपर नीचे। भगवान ने गोवर्धन पूजा से क्या हमें एक शिक्षा ये दी कि जैसे नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर नंद महाराज ने बाकी सारी पूजाओं को रोक दिया और जो भगवान चाहते थे वो पूजा की, इसे कहते हैं पूर्ण शरणागति, इसे कहते हैं व्यावहारिक तरीके से सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण शरणम, कि कैसे कृष्ण की शरण सभी धर्मों को त्याग कर एक शुद्ध भक्त करता है। इसीलिए भगवान ने नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी गण जैसों के लिए गोवर्धन उठाया। जब तक कि कोई बांधे रखता है कि मैं नहीं इसको नहीं छोड़ूंगा उसको नहीं छोड़ूंगा, तो भगवान कहते हैं ठीक है फिर उनकी शरण जाओ, फिर मैं गोवर्धन नहीं उठाऊंगा। भगवान गोवर्धन उन्हीं के लिए उठाएंगे जो सब कुछ छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण जाएंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि हम भी भगवान श्री गिरि गोवर्धन गोवर्धनधारी की उस कृपा को प्राप्त कर सकें, तो यह जानना बहुत आवश्यक है एकमेव श्री कृष्ण शरणागति हो रही है कि नहीं हमारे जीवन में। नहीं तो फिर जो भी वो मिश्रित भक्ति हो रही है, कर्म मिश्रित भक्ति हो रही है, तो उसमें फिर भगवान हमें छोड़ देंगे, जाओ फिर उन देवताओं के साथ रहो और वहां पर तो केवल सोम रस मिलेगा पीने के लिए, यहां पर भक्ति रसामृत सिंधु मिलेगा। तो ये हमें चयन करना है कि हमें केवल थोड़ा सा सोमरस पीना है, जैसे वो होता है ना रसना, रसना वो केवल केमिकल है, वो उसके अंदर कोई फ्रूट जूस नहीं, वो लिखते भी हैं नो फ्रूट जूस, केवल केमिकल है। तो उसको जब पीते हैं तो गले के लिए बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा है, जीवा के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के लिए वो इतना स्वास्थ्यदायक नहीं है। परंतु यदि आप शुद्ध असली जूस पियो तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये देवताओं का जो सोम रस है, ये जो देवता पूजा है, ये रसना के समान है, जल्दी बन जाता है, उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, सस्ते में काम पड़ जाता है, कोई आया तो दो मिनट में बन जाता है ना, क्या थोड़ा पानी डाला, आइस डाला, इतना सा डाला, उसमें हो गया। तो ये सब जो देवता भक्ति है ना, ये सब सस्ता, रस्ते का माल सस्ते में, ये सब सस्ते में काम पटने वाली चीजें हैं। परंतु यदि गोवर्धन पूजा करनी है, देखिए यहां से ये तो केवल स्टार्टर है उनके लिए। तो जो असली असली जूस, ताजा असली जूस, वो है भक्ति रसामृत सिंधु पूर्ण शरणागति। तो भगवान ने ब्रजवासियों के द्वारा, और फिर जब संवर्तक बादल वो बाढ़ ले आए पूरे वृंदावन में बाढ़, उसके पश्चात भी इनका विश्वास देखिए कि ये फिर गए, इंद्र के पास नहीं गए, ऐसा नहीं कि जाके फिर भगवान श्री कृष्ण को नंद महाराज एक तमाचा लगाते, तुमने बोला था ना ये सब करने के लिए, ये देखो अभी बाढ़ आ गई पूरी, वो सब गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अरहसि देवाना कुपितात भक्तवत्सल। वो भगवान को भक्तवत्सल बोलते हुए सारे ब्रजवासी गण कृष्ण के पास गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण, और कृष्ण को महाबाहो बोल रहे हैं, वो 7 वर्षीय छोटे से कृष्ण, उनको सभी ब्रजवासी गण बोलते हैं आप महाबाहो हो। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, आप पूरे गोकुल पूरे वृंदावन के आप नाथ हो हे कृष्ण, इसलिए आप ही हमारी रक्षा कर सकोगे। उन्होंने इंद्र पूजा शुरू नहीं की, तब भी उनका दृढ़ विश्वास बना रहा केवल भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। अभी तक भगवान ने गोवर्धन उठाया नहीं है, गोवर्धन उठाने के पश्चात ये तीसरा क्षण जब वो अपनी शरणागति दिखाए या दृढ़ विश्वास दिखाए। सबसे पहले नंद महाराज ने और सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की इंद्र पूजा रोककर। दूसरी दफा जब संवर्तक बादलों ने बाढ़ वहां पर मचा दी तब भगवान श्री कृष्ण की शरण फिर से ली, ये दृढ़ विश्वास दूसरी दफा। और तीसरी दफा जब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया और सभियों को कहा कि नीचे आओ अब इसके, किसी ने भी संशय नहीं किया, गिर गया तो ऐसा नहीं कि भगवान अब उठाए हुए हैं और बाकी सब बोल रहे हैं जाओ तुम जाओ थोड़ा जाके देखो, थोड़ा 5-10 मिनट खड़े रह के देखो फिर मैं आता हूं। कोई भी संशय नहीं कर रहा था, सब एक साथ भगवान ने बोल दिया नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। यह है दृढ़ विश्वास। कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं जब कठिनाइयों की बाढ़ आती है, जब कलयुग के संवर्तक बादल हमारे जीवन में बाढ़ लाते हैं कठिनाइयों परेशानियों की, और जब भगवान अपना हरिनाम लेकर हमें कहते हैं इसके नीचे आओ, इस हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लो, जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाकर कहा गोवर्धन के नीचे आओ, तो क्या हमें उन ब्रजवासियों की तरह दृढ़ विश्वास है? क्या हम केवल श्री हरिनाम की शरण ग्रहण कर सकते हैं, या फिर हम यहां वहां जो हमारे तौर तरीके हैं अपनी रक्षा करने के केवल उसी के पीछे भाग रहे हैं? इसलिए गोवर्धन पूजा हालांकि बहुत ही एक प्रसन्नोचित उत्सव है, परंतु इसके पीछे जो मार्मिक ज्ञान शिक्षाएं हैं, जैसे ब्रजवासियों का दृढ़ विश्वास भगवान हमारे सामने उद्धृत कर दिए कि तब जाकर भगवान हमारी रक्षा गोवर्धन उठाकर करते हैं। इसके पश्चात केवल भगवान श्री कृष्ण की एकनिष्ठ भक्ति काफी। देखिए इंद्र यज्ञ को रोककर भगवान ने कहा कि जितनी सारी सामग्री आप इकट्ठा किए हो इंद्र यज्ञ के लिए, उस याग के लिए, वो सारी सामग्री गोवर्धन पर्वत को अर्पित करो। देखिए ये एक बहुत बड़ा तमाचा था कि यदि नंद महाराज ये प्रस्ताव रखते कि ठीक है हम इंद्र की भी पूजा करेंगे और गोवर्धन की भी करेंगे, जो जो हमने सामग्रियां भोग वगैरह इंद्र पूजा के लिए बनाए हैं वो तो उनके लिए रहने दो, और अलग से हम भोग बनाते हैं गोवर्धन के लिए भी। भगवान ने कहा नहीं, अलग से कुछ नहीं बनाना है इसी को, अर्थात ये उसके समान हुआ कि मानो आप किसी को घर पे बुलाए हो और उसके सामने आपने फिस्ट का प्लेट रखा उसको खाने खिलाने के लिए, और अब वो खाने ही वाला है तो उठा लिया उसके सामने से और किसी और को दे दिया, बोला कि तुम्हारे लिए नहीं इसके लिए, कैसा लगेगा उसे, तो बुलाया क्यों, और बुलाया और वो भी सामने रखा और वो रखने के बाद में खाने ही जाने वाला था तो उठा लिया, बोला नहीं तुम्हारे लिए नहीं। तो वैसे ही हुआ, वो सब कुछ भोग अब देवराज इंद्र के सामने वो रखने ही वाले हैं या रख चुके थे, वहां से उठवा उठवा कर गोवर्धन जी के सामने रखो वहां। तो भगवान भी टाइमिंग के साथ सबक सिखाते हैं। तो वहां पर फिर से ब्रजवासियों की एकनिष्ठ कृष्ण भक्ति उन्होंने दिखाई। हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, कलयुग के ढोंगी भगवानों का पर्दाफाश करने हेतु, इसकी चर्चा श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद के अनुयायी बहुत करते हैं कि कलयुग में विशेष रूप से जो अपने आप को भगवान बोलते फिर रहे हैं, कहते हैं और यहां तक ऐसी उद्दंडता कि अपने आप को कृष्ण बोलते हैं, अरे भगवानों में भी यदि कह दे कि मत्स्य है कूर्म है तो कोई पूछ लेगा भाई दिखने में तो तुम क्या, समझ में नहीं आएगा किसी को, परंतु कृष्ण राम बंबई में एक मूछ भी नहीं मुंडवाई अब तक उसने, वो भद्दी उसकी मूछ यहां वहां से उग रही है जंगली वन की तरह। होते ना जंगल में ऐसे ही उगते रहते हैं बबूल के पेड़ यहां वहां से, तो वैसे उसकी मूछ और दाढ़ी, और वो खड़ा ऐसे विश्वरूप दिखा रहा है अपना, और उसके सारे जो चेले चपाटे वो खड़े हैं। वो जो एक अपना इस्कॉन का चित्र है, भगवान अर्जुन को विश्वरूप दिखाएं, वैसे वो खड़ा है चड्डी में और यहां ऐसे। अर्थात मुझे, मैंने जब वो मैं देखा बांड्रा में, वहां पर उसने बड़ा उसका वो फ्लेक्स लगा के रखा है, मुझे जब मैंने उसको देखा तो मुझे उससे ज्यादा जो उसके अनुयायी हैं उन पे तरस आया। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू चीट मी वंस यू आर अ रास्कल, इफ यू चीट मी ट्वाइस आई एम अ रास्कल। क्योंकि मैं ऐसा मूर्ख कि तुम मुझे सामने मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैं बेवकूफ बन रहा हूं। यहां पे मैं संगमनेर जाता हूं, तो संगमनेर के रास्ते में एक बड़ा फ्लेक्स लगा रखा है, उसका पेट इतना बड़ा सिंटेक्स टांकी जैसा, और ऐसे सड़ी गली दाढ़ी कहां से कहां जा रही है। और जो भगवत गीता का चित्र है अर्जुन का रथ हांकते हुए, तो रथ बना रखा है और ये वो लगाम भी दिख नहीं रही पेट के कारण, ऐसे पकड़ रखा है, वो फोटो खिंचा है अपने, जैसे वो पार्थ सारथी की फोटो वैसे। तो मैं बता रहा था कि अरे भगवान परम सुंदर हैं, और ये देखो इससे तो सुंदर वो घोड़े दिख रहे हैं। लोगों को शर्म भी नहीं आती, अरे फोटो भी खिंचानी, कम से कम वो पेट को तो ढको, ऐसे खुला ऐसे तोंद उसकी बाहर लटक रही है बेचारे, वो रथ चलेगा भी तो कैसे चलेगा। और यहां कृष्ण का अभिनय कर रहे हैं ये लोग। तो भगवान ने इन सब का पर्दाफाश करने हेतु कि लाइन में खड़ा करो इन सब तथा कथित ढोंगी भगवानों को, और इनके हाथ में एक एक गोवर्धन दो उठाने के लिए, और गोवर्धन छोड़ दो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, एक एक ईंट दे दो। यहां जहां काम करने वाले जो कंस्ट्रक्शन साइट से एक ईंट निकाल कर हाथ पे दो, और वो भी उसको दोनों हाथ से उठाने बोलो, छोड़ दो बाएं हाथ से वो छोटी उंगली, दोनों हाथ से 7 दिन 7 रात उठाए रख, और नहीं तो उसी ईंट से फिर सारी भगवत्ता निकालनी चाहिए ऐसों की। तो भगवान का ये प्रयोजन था कि ढोंगी भगवानों का पर्दाफाश करने हेतु। अब यहां पर देवराज इंद्र, जब उन्होंने देखा कि मेरा इंद्र याग रोक दिया नंद महाराज सारे ब्रजवासीगण ने, तो वहां पर कुपित हुए ये देवराज कुपित हुए, और क्रोध अवस्था में ये बोलने लगे, वाचा लंबा लिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपामे चक्रुर प्रियम। ये देवराज इंद्र के द्वारा कहा गया श्लोक। वो कहते हैं कि ये कौन है बालक, 7 वर्षीय बालक, बातूनी बालक, इतना अज्ञ, अपने आप को पंडित मान रहा है, इतना हटीला, इतना अहंकारी, स्तब्धम। ये देखिए क्या क्या बोल रहे हैं सब भगवान श्री कृष्ण। एक प्रकार से संस्कृत में गाली दे रहे हैं देवराज इंद्र। परंतु भागवत के एक बहुत बड़े टीकाकार श्रीधर स्वामी वो अपनी टीका में लिखते हैं कि जब ये सारी गालियां कि ये बातूनी बालक, वाचालम, वाचालम का अर्थ बातूनी, बालिशम ये अज्ञ बालक, स्तब्धम ये हटीला बालक, ये अज्ञ अपने आप को पंडित मान रहा है, इतने सारे सिद्धांत सुना रहा है, कर्म मीमांसा सिद्धांत सुनाया था भगवान ने नंद महाराज को। तो श्रीधर स्वामी भागवत के टीकाकार वो कहते हैं कि भगवान ने माता सरस्वती को कहा कि देवराज इंद्र की जिह्वा पर बैठकर मेरा गुणगान इस प्रकार से कराओ। तो ये जो श्लोक है ये वास्तविक रूप में भगवान का गुणगान देवराज इंद्र ने किया है। माता सरस्वती देवराज इंद्र की जिह्वा पर बैठकर ये गुणगान कैसे कराई? तो जब देवराज इंद्र कहते हैं कि ये वाचालम, ये बातूनी बालक, इसका अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा बातूनी और कौन हो सकता है? बातूनी का अर्थ क्या है? जो हर समय बड़बड़ बड़बड़ करता रहे उसे बातूनी बोलते हैं, जो बहुत बोलता है उसे बातूनी बोलते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा किसने बोला है? 108 उपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद के पश्चात अन्य उप उपनिषद और उप पुराण, भगवत गीता 700 श्लोक, श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक, महाभारत 1,00,000 श्लोक, रामायण 24,000 श्लोक। इन सभी ग्रंथों को, वैदिक पुराणों को यदि एक साथ लें, ये देखिए 1 घंटे के लेक्चर में गला खराब हो जाता है हमारा। भगवान बातूनी नहीं तो क्या है? इतना बोले हैं तो इंद्र वो सही कहे वाचालम, इनसे ज्यादा वाचालम और कौन हो सकता है? फिर बालिशम, बालिशम का अर्थ श्रीधर स्वामी ये देते हैं कि इंद्र मानो ये बोल रहे हैं कि जैसे एक बच्चा मासूम होता है, जैसे एक बच्चा उसे देखा जाता है कि वो अनघ पाप मुक्त रहता है, वैसे भगवान पाप मुक्त हैं हर समय एक बालक के समान। स्तब्धम, स्तब्धम का अर्थ है कि जो किसी के सामने न झुके। अरे तो सही बात है ना, भगवान किसी के सामने झुकेंगे? कोई है झुकने लायक? सबको झुकाए हुए हैं वो। इसलिए देवराज इंद्र ने जब स्तब्धम कहा कि ये जो इतना गर्वित, किसी के सामने न झुकने वाला बालक वाचालम, तो गुणगान किया। हाँ, कोई नहीं योग्य जिनके सामने ये झुक सके। अज्ञम, अज्ञम का अर्थ संस्कृत में कहते हैं जो कुछ जानता न हो। परंतु यहां पर श्रीधर स्वामी कहते हैं अज्ञम का एक और अर्थ है, कुछ जानने योग्य है ही नहीं, वो है अज्ञम, कि भगवान के लिए कुछ जानने योग्य है ही नहीं। देखिए इस संसार में लोगों को डॉक्टरी का ज्ञान होना पड़ता है, क्यों? तब जाकर वो काम धंधा अपना डॉक्टरी का शुरू करेंगे, किसी को इंजीनियर बनना पड़ता है, वो सब ज्ञान अर्जित करना पड़ता है ताकि वो फिर पैसे कमा सके। तो उसे वो यदि अज्ञ रहे तो कुछ कमा नहीं पाएगा। परंतु भगवान को कुछ कमाने धनाने की क्या जरूरत है, और कोई ऐसा ज्ञान है ही नहीं जो भगवान नहीं जानते हो, सभी कुछ तो भगवान से ही आ रहा है। इसलिए भगवान के लिए जो कुछ भी जानने योग्य नहीं, इसलिए वो अज्ञम। और पंडित मानिनम, इतने सारे महान महान पंडित, उन सभियों ने भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि देव, देवा आदि देव माना है। पंडित मानिनम का ये अर्थ है। अब हम ये देखेंगे कि गोवर्धन लीला में 8 आश्चर्यजनक कौन कौन से मुद्दे हुए, आश्चर्यजनक मुद्दे जो गोवर्धन लीला में भगवान ने प्रस्तुत किए। एक 7 वर्षीय बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ रोक दिया। यह सबसे बड़ा एक आश्चर्य, जो कि देवराज इंद्र भी चकित रह गए कि एक 7 वर्षीय बालक के कहने पर इन्होंने मेरा इंद्र यज्ञ रोक दिया। आजकल हम देखते हैं कलयुग में भी कोई हरे कृष्ण आंदोलन में आता है तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी जब जाके अपने माता पिता को कहते हैं कि आपको हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, तो बोलते हैं अच्छा तो अब तू हमें भक्ति सिखाएगा, तुझे जो हमने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना जो तेरा मलमूत्र साफ करते थे हम, और तुम हमें बोलता है ऐसे भक्ति करो, तुम कहता है ये भोग चढ़ाओ, हमें पता नहीं क्या। तो एक कई बार माता पिता का एक अहंकार होता है कि अरे इसको पैदा मैंने किया, इतना छटांक का था ये, और अब मुझे प्रवचन देता है कि ये करो वो करो। तो एक आश्चर्य था कि 7 वर्षीय बालक ने इंद्र याग रोक दिया। इतना ही नहीं, उसके बदले एक पर्वत की पूजा करने के लिए, ऐसा नहीं कि जयपुर से किसी और डीटी को ऑर्डर किया कि अभी इसकी पूजा करो, पर्वत की पूजा शुरू करो। अब ये कौन से शास्त्र में लिखा गया है कि पर्वत की पूजा होनी चाहिए? तो यहां पर जैसे कई बार कोई व्यक्ति बोलता है कि यदि भगवान मूर्ति में मिलते हैं तो मैं पूजूं पहाड़, कई बार लोग इस प्रकार के दोहे बोलते रहते हैं कि यदि पत्थर में भगवान किसी को मिलते हैं तो मैं पहाड़ों को क्यों नहीं पूजूं? अरे पूजो, एक ही पहाड़ है पूजनीय योग्य, श्री गिरिराज महाराज की। तो भगवान ये भी दिखा रहे थे कि हाँ, भगवान यदि प्रस्थापित करते हैं तो एक पर्वत में भी भगवान पूजनीय हो सकते हैं, या पर्वत भी पूजनीय हो सकता है। इंद्र जैसे महान देवता भी भगवान के ऊपर क्रोधित हो सकते हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जो भगवान द्वारा अपॉइंट किए गए, नौकरी मिली है भगवान के कारण, और जिस बॉस ने नौकरी दी है, जो पोजीशन दिया है, उसी बॉस के पीछे इतना, उसके ऊपर इतना क्रोध। इससे ये समझ में आता है कि किसी को पद दिया जाता है तो उसका बुखार कितना गहरा चढ़ जाता है, ये भगवान दिखा रहे थे इसके द्वारा। आश्चर्यजनक बात है ये। वृंदावन को विध्वंस करने हेतु इंद्र ने कौन से बादल, ऐसे कोई साधारण गली कूचे के बादल नहीं भेजे, संवर्तक जो कि प्रलय के समय इस्तेमाल किए जाते, वो बादलों को इंद्र ने भेजे। ब्रजवासीगण अपने रक्षा हेतु 7 वर्षीय बालक के पास ही दौड़े, और किसी के पास नहीं, इसकी चर्चा हमने की। ये भी एक आश्चर्यजनक बात कि ऐसा नहीं फिर वो अलग अलग अन्य देवताओं को पुकारने लगे, इंद्र को पुकारने लगे, या खुद छतरी वतरी ढूंढने लगे, या कोई टेंट वेंट बांधने लगे, नहीं, केवल कृष्ण के पास। भगवान के गोवर्धन के रास्ते तक वर्षा की एक बूंद तक नहीं गिरी। ये कवि कर्णपुर कहते हैं कि भगवान जब नंद भवन से निकले गोवर्धन की ओर, बहुत दूर नंद भवन से गोवर्धन, तो भगवान जो चल के आ रहे थे चारों तरफ बाढ़, परंतु भगवान जो रास्ते पर चले, भगवान के ऊपर एक बूंद बारिश की नहीं। संवर्तक प्रयास कर रहे थे, परंतु योग माया ने भगवान के ऊपर एक ऐसा अदृश्य छात्र रख दिया, छतरी रख दी, कि भगवान के ऊपर एक बूंद वर्षा का जल नहीं। क्यों? क्योंकि 7 दिन 7 रात अब भगवान उठाए हुए खड़े रहेंगे वहां पर, तो थोड़ा सा मेकअप वेकअप बना रहना चाहिए। अच्छा, योग माया का ये काम, तो बारिश के पानी से सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए भगवान ऐसे ही सूखे पहुंचे वहां पर। अर्थात भगवान ये भी दिखा रहे थे कि देवराज इंद्र, तुम कितने भी संवर्तक को बुलाओ, मेरे ऊपर एक बूंद भी नहीं गिर सकती तुम्हारी, इसलिए ले जाओ इन संवर्तकों को और इनको थोड़ा आराम दो, नहीं तो ये बेचारे थक थक कर ये खुद रोने लगे थे संवर्तक। जब सारे उनके बादलों से पानी चला गया तो फिर बूंदे गिर रही थी बस, केवल छोटी छोटी। वो क्या थी बूंदे? आंसू संवर्तक के, रो रो के। उसमें देवराज इंद्र के भी आंसू एक दो बूंद टपक के गिर रहे थे। गोवर्धन को भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी सी अंगुली पर 7 दिन और 7 रात उठाए रखा। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। जितने भी सारे वैज्ञानिक जब गोवर्धन लीला सुनते हैं तो समझ में नहीं आता ये कैसे बैलेंसिंग एक्ट कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति मुझे पिछले हफ्ते पूछ रहा था कि कैसे मैं साइंटिफिक तरीके से समझूं कि इतना बड़ा पर्वत और इतनी सी उंगली पर बैलेंस कैसे किया। तो मैंने पूछा, तुम हवाई जहाज में ऊपर जाते हो, उसके नीचे तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं पकड़ा है, वो कैसे ऊपर रहता है? उसके पीछे तो साइंस है ना। तो मैंने कहा, इसके पीछे भी साइंस है ना। इसको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट समझ सकते हैं। तो बाकी सब के लिए साइंस 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 बोल देते हैं। अरे इतनी बड़ी भूमंडल, इतने सारे ग्रह, वो सब जो भगवान ऐसे ही तैरा रहे हैं आकाश मंडल में, तो क्या भगवान एक पर्वत को नहीं उठा सकते अपनी छोटी सी उंगली? और यदि वो नहीं उठा सकते तो कैसे भगवान हुए फिर? तो इसलिए ताकि हम हमारी ये सीमित बुद्धि से न समझ पाए, इसलिए भगवान छोटी सी उंगली पे उठाते हैं। भगवान ऐसे भी उठा सकते थे, वो जो वो ओलंपिक्स में उठाते हैं ना, वो उनको देखो, वो उठाते समय ऐसे उनका चेहरा रहता है और सभी लोग आए आए और ऐसे वो उठाते समय उनका चेहरा, और जब ऊपर करते ऐसे मानो अभी वो आंखें बाहर आ जाएंगी, सारी जो आंतड़ियां वो बाहर आ जाएंगी, और फिर केवल 1 मिनट लगे पटकते हैं उसको, मेडल लाओ कहाँ है। 7 दिन 7 रात छोटी सी अंगुली पे। इसलिए ये जो कलयुग के जो ढोंगी है ना, जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, ये भी ऊपर करते हैं ऐसे हाथ, लेकिन कलयुग में तो इनको बोल सकते हैं, अरे भाई तुम अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं रख सकते, इसलिए हाथ ऐसे ऊपर करना पड़ता है तुम्हें आए दिन, और अपने आप को बोलते हो वही कृष्ण हो तुम। तो भगवान का ये एक प्रयोजन था। और अंतिम आश्चर्यजनक बात ये थी, भगवान कृष्ण ने एक बार बुलाने पर सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। इसलिए गोवर्धन लीला हालांकि इसकी व्याख्या तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, परंतु जो भगवान के आठ कारण और आठ आश्चर्यजनक मुद्दे गोवर्धन लीला में, विशेष रूप से भगवान, हालांकि देवराज इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे, कलयुग के ढोंगी भगवानों का पर्दाफाश करना चाहते थे, परंतु उससे ज्यादा वो एक कारण जो भगवान गोवर्धन का यश वर्धन करना चाहते थे और ब्रजवासियों के साथ एक साथ मिलकर सात दिन और सात रात लीला करना चाहते थे, ये भगवान का विशेष प्रयोजन था गोवर्धन लीला करने का, गोवर्धन पूजा करवाने का। इसलिए ये एक ऐसा त्यौहार है जो कि बाकी सभी त्योहारों में से सर्वप्रथम कहा जा सकता है, सर्वोपरि कहा जा सकता है, क्योंकि यह ऐसा त्यौहार है जो भगवान ने अपने मुख से कहा है, ऐसे मनाओ। अर्थात इस त्योहार के गाइडलाइंस भगवान के मुख से आई है डायरेक्ट, गोवर्धन पूजा कैसे मनानी चाहिए। इसलिए जब हम उन भगवान की वाणी के पदचिन्हों पर चलते हुए इस गोवर्धन पूजा को मनाते हैं, जैसे आज हम प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी कृपा बहुत ही सरल तरीके से, दिव्य तरीके से और असीमित तरीके से हमें मिलती है। तो यही हमें प्रार्थना श्री गोवर्धन से आज करनी चाहिए, निज निकट निवास देही मम गोवर्धन। रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने जो प्रार्थना की कि मुझे आपके निकट निवास दीजिए, और श्री गोवर्धन के निकट निवास लेने के लिए हमें ब्रजवासियों के पदचिन्हों पर चलना होगा, और जब उनके पदचिन्हों पर चलेंगे उनकी तरह हमारा दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर होगा, श्री गोवर्धन धारी के ऊपर होगा, और एक निष्ठ कृष्ण भक्ति जब हम कर पाएंगे तब जाकर श्री गोवर्धन की जो कृपा है वो हमें केवल साल में एक बार नहीं, हर क्षण मिलती रहेगी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरि गोवर्धन की, श्री गोवर्धन लाल की, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की, जय गौर प्रेमानंदी।